रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप अपने दोस्त आरजे भावना के साथ और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एस बंसल, हु इज अ कार्डियोलॉजिस्ट एज वेल एज एमडी मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद। और हम आज इनसे जान रहे हैं पेसमेकर्स के बारे में। पेसमेकर सुनने में एक बहुत ही टेक्नोलॉजी का और शायद एक टेक्निकल टर्म नजर आता है, लेकिन ये वो है जो आपकी दिल की धड़कनों को ठीक रखता है और साथ के साथ आपकी दिल की धड़कनों को ठीक रखने के अलावा आपकी जिंदगी को सुचारू रूप से चालू रखता है। फिलहाल तहे दिल से एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर एस बंसल का रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में।
थैंक यू भावना।
डॉक्टर साहब, आज आपसे सबसे पहला सवाल और वो ये है कि ये पेसमेकर होता क्या है।
पेसमेकर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। पेसमेकर एक मेटल बॉक्स है, बड़ा छोटा सा, जिसकी डायमेंशन मतलब 2 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा, इतना सा है वो। और अभी तो उससे भी छोटे आ गए हैं। और इट इज़ जस्ट लाइक ए इट इज़ ए मेटल बॉक्स जो कि माचिस की डब्बी के जितना होता है। आप मतलब इसको उस तरह से समझ सकते हैं। उसके अंदर 3 ही चीज़ें होती हैं। एक तो पेसमेकर के जो कैन है वो मेटल का, टाइटेनियम का कैन होता है। उसके अंदर एक लिथियम की बैटरी होती है जो 10-15 साल तक उसको पावर देती रहती है। फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है और उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एक चिप होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसमें
जी।
तो वो पेशेंट की सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डाटा रखती है, तो वो उसका इंटरोगेट ताकि किया जा सकते हैं और रिमोट कंट्रोल से ही उसको आप इंटरोगेट कर सकते हैं। तो पेसमेकर एक किस्म का छोटा सा मैच बॉक्स जितना डिवाइस है, जिसके अंदर कंप्यूटर मेमोरी है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और एक बैटरी है। और ये जो पेसमेकर है ये आपकी हार्ट बीटिंग के लिए है। और इसका मतलब बिना किसी बड़े ऑपरेशन से आप छोटे से एक कट से इसको स्किन के नीचे डाल देते हैं और इसके साथ हार्ट के अंदर उस वेन में से एक छोटे से पंचर के थ्रू, एक वेन के थ्रू आप एक लीड डाल देते हैं, इलेक्ट्रोड, जो हार्ट के साथ इस बॉक्स को कनेक्ट कर देता है। तो एक किस्म की एक इलेक्ट्रिकल वायर आपने हार्ट में लगा दी और उस वायर को आपने इस मैच बॉक्स से कनेक्ट कर दिया। दोनों चीज़ें इनविजिबल होती हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती। कॉलर बोन के नीचे वो आपकी मेटल बॉक्स लग जाती है स्किन के नीचे, बाहर से किसी को नहीं पता लगता आपके अंदर पेसमेकर लगा हुआ है। ये आपकी धड़कन को मॉनिटर करता है। आपकी धड़कन, जब भी आपकी धड़कन एबनॉर्मली स्लो होगी तो ये उसका काम टेक ओवर कर लेता है हार्ट का। तो हार्ट को फिर ये करंट देना शुरू हो जाता है ताकि आपका हार्ट बंद ना हो और आपको चक्कर ना आए और आपकी डेथ ना हो।
डॉक्टर साहब, ये पेसमेकर की ज़रूरत किसको पड़ती है या कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जब पेसमेकर लगाना पड़ता है एक पेशेंट के हार्ट में?
जब हमारी धड़कन 40 से नीचे चली जाए
जी,
अगर दिन में हमारी धड़कन 40 से नीचे रहे, एक मिनट के अंदर हमारी धड़कन 60 से ऊपर होनी चाहिए
जी।
लेकिन 60 से नीचे आप थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हो, पर अगर 40 से नीचे अगर धड़कन चली जाती है फिर आप टॉलरेट नहीं कर सकते। तो आपका 40 से नीचे धड़कन चली जाए या 3 सेकंड तक आपका हार्ट बीट ना करे। 3 सेकंड का मतलब हमारा हार्ट नॉर्मली हर सेकंड पे बीट करता है
जी।
और अगर 3 सेकंड तक वो बीट करना भूल जाए बिकॉज ऑफ सम डिजीज, तो उसको उस सिचुएशन में पेशेंट को चक्कर आ सकता है, हेड इंजरी हो सकती है, एकदम बेहोश होकर लोग गिर जाते हैं
जी।
और पेसमेकर के साथ साथ उनकी हेड इंजरी का भी इलाज करना पड़ता है
जी।
तो ये स्थिति ना हो, अगर आपको हल्का सा भी चक्कर आया है या आपको लगता है अपनी नब्ज देखने पे कि आपकी धड़कन बहुत ही स्लो हो गई है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। वो अगर आपका 40 से नीचे धड़कन हो गई और 3 सेकंड तक का पॉज आएगा हॉल्टर में या ECG में, फिर वो आपको पेसमेकर की सलाह देंगे।
अक्सर जिस प्रकार हमने बात की रिदमिया के बारे में, तो क्या रिदमिया में भी पेसमेकर लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है?
अरिदमिया में एक्चुअली जो अरिदमिया हैं वो 2 प्रकार के होते हैं
जी।
एक होते हैं स्लो हार्ट रेट वाले, उनको हम ब्रैडी अरिदमिया बोलते हैं। एक होते हैं फास्ट हार्ट बीटिंग वाले, उनको हम टैकी अरिदमिया बोलते हैं
जी।
तो पेसमेकर भी इसी प्रकार 2 तरह के आते हैं। जो ब्रैडी अरिदमिक पेसमेकर हैं वो ब्रैडी कार्डिया का ख्याल रखते हैं, जो टैकी अरिदमिक पेसमेकर हैं वो फास्ट हार्ट बीटिंग का ख्याल रखते हैं
जी।
तो पेसमेकर स्लो हार्ट रेट में भी लगते हैं, फास्ट में भी लगते हैं। स्लो वाले पेसमेकर जो है सिंपल टाइप के होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, सिंगल चैम्बर एंड डुअल चैम्बर
जी।
सिंगल चैम्बर होते हैं जो सिर्फ एक राइट वेंट्रिकल में लगा के लीड आप करंट को राइट वेंट्रिकल में पहुंचा देते हैं पेसमेकर से, वो फिर सारे हार्ट में फैल जाता है और हार्ट धड़कता है
जी।
लेकिन उसमें अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर की कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है तो आदमी जल्दी थकता है। लेकिन कुछ जो पेसमेकर आते हैं डुअल चैम्बर, उसमें अपर चैम्बर में भी हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और लोअर चैम्बर में भी लगा देते हैं, और उसमें अपर चैम्बर पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद लोअर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अपर चैम्बर ब्लड पुश करता है लोअर चैम्बर में, फिर वो लोअर चैम्बर में ज़्यादा ब्लड होता है तो वो ज़्यादा अच्छा पंप करता है
जी।
तो ये पेशेंट को फिर थकावट नहीं होती। तो और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो इसको हम डुअल चैम्बर बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको हम डुअल चैम्बर लगाते हैं। तो ये तो हो गए पेसमेकर स्लो हार्ट रेट के लिए। अब फास्ट हार्ट रेट की बात करते हैं। फास्ट हार्ट रेट में एक कंडीशन होती है एटल फिब्रिलेशन, जो मैंने बताया
जी।
एटल फिब्रिलेशन अगर किसी की, उसमें धड़कन बहुत फास्ट हो जाती है, कई बार ना 200, 200, 150, 200 ऐसी रेंज में रहनी शुरू हो जाती है और इरेगुलर होती है, उससे पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो ऊपर का करंट, वो एबनॉर्मल करंट ऊपर बन रहा है तो ऊपर से करंट ने नीचे जाना है, तो नीचे जाने के लिए एक रास्ता, रास्ते में एक एवी नोड आता है
जी।
उस एवी नोड को हम एब्लेट कर देते हैं, जला देते हैं विद वायर्स। हम एक करंट देके सिर्फ बिना चीर फाड़ के एक कैथेटर से उसको जला देते हैं, उसको हम एवी नोड एब्लेशन बोलते हैं। उसके बाद ऊपर का करंट नीचे नहीं आ पाता
जी।
तो नीचे करंट देने के लिए फिर हम पेसमेकर डाल देते हैं। तो एक उस तरह की सिचुएशन में भी पेसमेकर डालते हैं। फिर आजकल जो बहुत एडवांसमेंट हो गई, जिनके हार्ट बहुत वीक हो गए
जी,
जिनके हार्ट की पंपिंग पावर 35% से भी कम हो गई, उनको हम एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर
जी।
उसमें हार्ट के होता क्या है, वीक हार्ट में हार्ट का जो बीच वाला पर्दा है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और हार्ट का बाकी पोर्शन बाद में कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव पंपिंग हो जाती है हार्ट की। तो हम एक तार सेप्टम पे लगा देते हैं और दूसरी तार हार्ट के फ्री वॉल पे लगा देते हैं। उस दोनों तारों में इकट्ठा करंट जाता है तो एक हार्ट सिंक्रोनाइज्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है, उससे हार्ट पे लोड कम होता है, इफेक्टिव पंपिंग होनी शुरू हो जाती है। तो वीक हार्ट वाले पेशेंट्स में हम बाई वेंटिकुलर टाइप का पेसमेकर लगाते हैं, विच इज़ लिटिल मोर एक्सपेंसिव। उसके बाद जिसको धड़कन की प्रॉब्लम होती है, सडन डेथ होने का डर होता है VTVF से, तेज धड़कन की वजह से, उसमें हम ICD लगाते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। वो शॉक देता है, शॉक मशीन है, वो शॉक देता है हार्ट को। तो शॉक के बाद कई बार हार्ट स्लो हो जाता है, तो उसमें भी पेसमेकर होता है जो कि स्लो होने पे उसको कवर कर देता है। तो पेसमेकर कई प्रकार के हैं, आपका कार्डियोलॉजिस्ट ये देखेगा कि आपको किस टाइप का पेसमेकर आपके लिए सूटेबल है। आजकल MRI कंपेटेबल पेसमेकर भी आने लगे हैं। नॉर्मली क्या है, पेसमेकर लगाने के बाद आप MRI नहीं करा सकते क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है, आपको चक्कर आ सकता है MRI में, आपका पेसमेकर काम करना बंद कर देता है इतने हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड में, उसके सर्किट काम करने बंद हो जाते हैं बिकॉज वो आयरन के होते हैं, तो उस समय आपकी डेथ हो सकती है, चक्कर आ सकता है। तो MRI हम मना करते हैं पेसमेकर के पेशेंट को, लेकिन आजकल इतनी एडवांसमेंट हो गई, आजकल MRI कंपेटिबल पेसमेकर भी आ गए हैं। तो बहुत वैरायटी के पेसमेकर हैं, यू हैव टू डिस्कस एट लेंथ विद द डॉक्टर, देन यू कैन चूज द राइट पेसमेकर फॉर यू।
डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी और वो है पेसमेकर से रिलेटेड, वो ये है कि पेसमेकर लगने के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं एक इंसान पर। आजकल अगर देखा जाए तो हम एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां पर सेलफोन्स यूज करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में ट्रैवल करते हैं, अगर मेट्रो की बात की जाए हम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में क्या पेसमेकर एक हिंड्रेंस रहता है? अगर आप सिक्योरिटी चेक की बात करें तो आपकी एक सिक्योरिटी चेक, अगर आप एक नॉर्मल से मॉल में जाते हैं तो आपका एक सिक्योरिटी चेक होता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह से निकलते हैं जहां पर अगर आपके बॉडी में पेसमेकर लगा है तो वो बीप के साउंड आने, क्योंकि वो लोहे की चीज़ है, तो ऐसी क्या परेशानियां पेसमेकर लगे हुए पेशेंट को आती हैं?
ये आती तो हैं पर बहुत माइनर सी हैं, ऐसा उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। जैसे हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि भी आप अगर सेलुलर फ़ोन यूज़ करते हैं
जी।
तो सेलुलर फ़ोन में पहले जो एनालॉग के सेलुलर फ़ोन आते थे उनमें तो पेसमेकर से कोई इंटरफेरेंस नहीं थी, आजकल डिजिटल फ़ोन्स आते हैं
जी।
इन दे कैन इंटरफेयर विद दी पेसमेकर, तो उसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है, जो वेव्स उसमें से निकलती हैं, दे कैन इंटरफेयर विद दी पेसमेकर फंक्शनिंग। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि पेसमेकर अगर किसी को लगा हुआ है तो पेसमेकर अगर लेफ्ट साइड में लगा है तो वो सेलुलर फ़ोन का इस्तेमाल राइट साइड से करें, या वो फ़ोन को पॉकेट में रखें और उसको कनेक्ट करके ईयर प्लग से यूज़ करें, ईयर प्लग्स या हेडफोन यूज़ करें। तो एक तरीका तो ये है, पॉकेट में और अपर जो पॉकेट है, अगर लेफ्ट साइड में पेसमेकर ज़्यादातर हम लगाते हैं तो लेफ्ट साइड में ही शर्ट में पॉकेट होती है
जी।
तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को जिनको पेसमेकर लगा हुआ है कि वो मोबाइल फ़ोन को पॉकेट में ना रखें, शर्ट की पॉकेट में ना रखें, पैंट की पॉकेट में रखें
जी।
एक तो सेलुलर फ़ोन का ये हो गया, दूसरा जो सिक्योरिटी चेक्स में से वो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें अलार्म आएगा, इसलिए उनको अपने साथ वो अपना कार्ड रखना पड़ेगा जिसमें ये इंडिकेट हो कि उनको पेसमेकर लगा हुआ है। अदरवाइज सिक्योरिटी वाले सोचेंगे कि इसके पास कोई वेपन है, तो इसलिए उनको ये बताना पड़ता है कि भाई मेरे पेसमेकर लगा हुआ है। तो एक बार उसमें से निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके पास खड़े रहना बहुत देर तक वो हार्मफुल हो सकता है। उसके अलावा जो वो सिक्योरिटी वाले वैंड यूज़ करते हैं टू चेक स्क्रीन द बॉडी, उसको पेसमेकर के पास अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद एक दो चीज़ें हैं, जैसे फिजियोथेरेपी में एक टेंस होती है, टेंस का इस्तेमाल किया जाता है फ्री फिजियोथेरेपी में। वो एक इक्विपमेंट है कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पैदा कर सकता है पेसमेकर के अंदर। तो जब भी आप फिजियोथेरेपी कराएं तो फिजियोथेरेपिस्ट को बता दें कि टेंस का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है बॉडी पे, तो पेसमेकर के आसपास अगर कोई सर्जरी होनी है, मान लो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया या कोई चेस्ट की सर्जरी होनी है, तो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स कोटरी का इस्तेमाल करते हैं जी। तो वो कोटरी जो है पेसमेकर के फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकती है, तो इसलिए वो डॉक्टर को आपको बताना पड़ेगा भी उसके आसपास कोटरी का इस्तेमाल ना करें। फिर रेडियोथेरेपी, जो लोग कैंसर के पेशेंट रेडियोथेरेपी लेते हैं, उसमें भी उनको बताना जरूरी है कि भी आपके पेसमेकर लगा हुआ है, बिकॉज रेडियोथेरेपी से भी उस मशीन के अंदर जो फील्ड है दैट कैन डिस्टर्ब द पेसमेकर फंक्शनिंग। MRI सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। MRI के अंदर तो पेसमेकर के पेशेंट को जाना ही नहीं चाहिए। अगर उसको MRI कंपेटिबल पेसमेकर लगा हुआ है तो भी उसको पहले MRI स्विच ऑन करना पड़ता है पेसमेकर के अंदर, फिर ही वो MRI जाके करा सकते हैं। नहीं तो अल्टरनेटिव टेस्ट वो CT स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, डेक्सा स्कैन करा सकते हैं, मेमोग्राफी करा सकते हैं, इको करा सकते हैं, TMT करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, बाकी सब कुछ करा सकते हैं। और इसलिए कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिकल आइटम जितनी हैं, माइक्रोवेव है, घर में जितनी छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, वो सारी की सारी वो इस्तेमाल कर सकते हैं
जी। डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल और वो ये है कि क्या एक इंसान एक्टिव लाइफ जी सकता है जब उसे पेसमेकर लग जाता है? क्योंकि जब शरीर से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान कि अब मैं एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ, या फिर वो जॉगिंग हो, या फिर गेम्स खेलना है, या फिर स्कीइंग करना है। क्या ऐसी चीज़ों में भी कोई हिंड्रेंस आता है पेसमेकर के लग जाने से?
ये हम 6 हफ्ते तक मना करते हैं। अगर पेसमेकर किसी को लगा हुआ है तो 6 हफ्ते तक हम कहते हैं कि आपका हाथ जो है शोल्डर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। शोल्डर हाइट तक आपकी आर्म लिफ्ट कर सकते हैं आप, बियॉन्ड शोल्डर हाइट यू शुड नॉट रेज द आर्म फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, नहीं तो वो लीड खींच के निकल सकती है आपकी और आपको चक्कर आ सकता है। तो ये इस रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 6 हफ्ते के लिए। अगर आप कोई टेनिस खेलना चाहते हैं, जॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपका हाथ जो है ना, हाथ की मूवमेंट बड़ी फोर्सफुल और सडन नहीं होनी चाहिए फॉर 6 वीक्स। आफ्टर 6 वीक्स क्या होता है कि लीड अच्छे से जुड़ जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, फिर वो आप अगर झटका भी दे देंगे लीड को तो वो निकलेगी नहीं
जी।
तो 6 हफ्ते के बाद कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। वेट भी हम कोशिश कर पेशेंट को यही बोलते हैं कि 5 किलो से ज़्यादा वेट ना उठाएं, और 6 वीक्स के बाद वो भी रिस्ट्रिक्शन हट जाती है। तो ऑल रिस्ट्रिक्शंस आर ओनली फॉर 6 वीक्स, आफ्टर दैट फिजिकल एक्टिविटी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं
जी। एंड फॉर दैट मैटर, अगर कोई ट्रेडमिल पर जॉग करना चाहता है तो क्या वो भी
वो कर सकता है? वो अलाउड है, उसमें आर्म्स की एक्सरसाइज नहीं अलाउड। ट्रेडमिल में ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग सब अलाउड है, लेग्स की जो मर्जी एक्सरसाइज करो, आर्म्स की अवॉइड करनी
जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि एक पेसमेकर की लाइफ कितनी होती है? मान लीजिए किसी इंसान ने अपना पेसमेकर लगवाया है तो वो कितने साल तक काम करता है?
पेसमेकर की जो बैटरी लाइफ है, अगर दो तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं 100% पेसिंग पे। कई लोगों को इंटरमिटेंट प्रॉब्लम होती है, मतलब कुछ देर उसको पेसमेकर की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में वो अपनी रिदम, उनकी अपनी हार्ट बीटिंग आ जाती है
जी।
तो अगर किसी की 100% डिपेंडेंस हो पेसमेकर पे, अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का बिल्कुल काम ना करता हो, ऐसे पेशेंट में पेसमेकर जो है, पहले तो यूजली जो डुअल चैम्बर पेसमेकर थे वो चलते थे 6-7 साल, बैटरी ख़त्म हो जाती थी 6-7 साल में। अब वो 12-13 साल तक चलते हैं, बिकॉज अब बेटर बैटरीज आ गई हैं, उनकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है
जी।
और अगर कोई पेशेंट को इंटरमिटेंट पेसिंग की ज़रूरत पड़ती हो तो कई बार 18-18, 20-20 साल तक भी चल जाते हैं पेसमेकर। तो उसके लिए क्या करना होता है कि हर साल उनको बुला के चेक करते हैं हम, और जब वो बैटरी की वोल्ट्स डाउन होनी शुरू हो जाती हैं तो एवरी फ्यू मंथ्स वी चेक। तो जैसे उसमें ना पेसमेकर की बैटरी जब कम हो जाती है तो स्लो हो जाता है हार्ट रेट पेशेंट का, धड़कन स्लो हो जाती है और वोल्ट्स कम हो जाते हैं। हम उसको रिमोट कंट्रोल से चेक कर लेते हैं कि भी उसके वोल्ट्स कम हो रहे हैं
जी।
तो 3 महीने 6 महीने पहले ही पता लग जाता है कि भी उसकी बैटरी ख़त्म होने के पास जा रही है
जी।
उसको एंड ऑफ लाइफ बोलते हैं पेसमेकर की। उसमें हम 3 महीने पहले ही उसका चेंज कर देते हैं
जी।
तो उसको चेंज करने के लिए सारा कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, सिंपली पॉकेट खोलते हैं, जो बाहर की डब्बी या मेटल बॉक्स उसको चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रोड वही लगे रहते हैं हार्ट में। वो वारंटी में यूजली कवर होता है, पेशेंट को उसका पे नहीं करना पड़ता, पर उसको मेटल बॉक्स यूजली कंपनियां फ्री दे देती हैं
जी। और डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपने बात की कि पेसमेकर रिप्लेस हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान को एक पेसमेकर लगा हो और उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं हो तो वो पेसमेकर निकल जाता है, या ये ज़िंदगी भर के लिए एक परमानेंट पेसमेकर हो जाता है?
पेसमेकर 2 तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट
जी।
जब हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को एक टेम्परेरी प्रॉब्लम हुई, टेम्परेरी जैसे किसी ने पेशेंट ने ओवरडोज ले ली बीटा ब्लॉकर्स की या कुछ और ड्रग्स हैं, डिल्टियाजैम कैलेप्टिन है, ये सारी ड्रग्स जो हैं कई बार पेशेंट ओवरडोज ले लेते हैं
जी।
ज़्यादा तेज धड़कन थी, डॉक्टर से नहीं कंट्रोल हुई, उसने डोज बढ़ाते गए अल्टीमेटली स्लो हो गया। तो जो टेम्परेरी, या पोटाशियम बहुत ज़्यादा हो गया उससे भी धड़कन स्लो हो जाती है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं जिनमें धड़कन बहुत स्लो हो जाती है
जी।
तो दवाइयों की वजह से, थायराइड की वजह से, या रिवर्सिबल पोटाशियम है, जैसे रिवर्सिबल और भी कोई कॉज हो
जी।
उसमें जो धड़कन स्लो होती है ना, उनमें हम टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं एंड वी वेट फॉर द इफेक्ट टू गो। मेडिसिन का इफेक्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक हम उसको टेम्परेरी पेसमेकर पे रख लेते हैं। जैसे ही दवाइयाँ बॉडी से निकल जाती हैं, धड़कन नॉर्मल हो जाती है और टेम्परेरी पेसमेकर को हम निकाल देते हैं। पर टेम्परेरी पेसमेकर के लिए आईसीयू में भर्ती रहना पड़ता है 2-3 दिन तक
जी।
अगर हमें लगे कि कोई रिवर्सिबल कॉज नहीं है धड़कन का, इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रिकल वायर्स परमानेंटली डीजेनरेट कर गई, ख़त्म हो गई, काम नहीं करेंगी अब। तो अगर किसी की परमानेंटली डीजेनरेट हो गई हैं जिसमें कोई रिवर्सिबल कॉज नहीं है, फिर हम उसको जो पेसमेकर लगाते हैं उसको परमानेंट पेसमेकर बोलते हैं। वो उसकी लाइफ में परमानेंटली लगा रहता है, वो नहीं निकलता फिर।
फिलहाल हमने पेसमेकर इम्प्लांटेशन के बारे में ली ढेर सारी जानकारी। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर एस एस बंसल का कि वो रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में आए और सभी को दी इतनी बेहतरीन जानकारी।
थैंक यू भावना।